नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार ने सोमवार को सेब आयात पर शर्तें लगा दी। इसके तहत 50 रुपए किलो से कम के भाव पर सेब का आयात नहीं किया जा सकेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि अगर कीमत 50 रुपए किलो से अधिक है तो आयात की अनुमति होगी। अधिसूचना के अनुसार अगर CIF लागत बीमा माल ढुलाई आयात कीमत 50 रुपए किलो से कम है तो सेब के आयात पर पाबंदी होगी। न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त भूटान से होने वाले आयात पर लागू नहीं होगी। भारत को सेब निर्यात करने वाले मुख्य देशों में अमेरिका, ईरान, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम, चिली, इटली, तुर्की, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और पोलैंड शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका से आयात 2022-23 के अप्रैल फरवरी में 84.8% बढ़कर 1.85 करोड़ टन रहा। इसी प्रकार पोलैंड से आयात इस दौरान 83.36% बढ़कर 1.53 करोड़ टन रहा। हालांकि अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और अफगानिस्तान से आयात में कमी आई। कमजोर वैश्विक मांग के बावजूद चीन का निर्यात अप्रैल में अप्रत्याशित रूप से 8.5% बढ़ा। सीमा शुल्क विभाग ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी। इस दौरान निर्यात बढ़कर 295.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इससे पहले मार्च में निर्यात 14.8% की दर से बढ़ा था। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में आयात सालाना आधार पर 7.9% घटकर 205.2 अरब डॉलर रह गया। मार्च में आयात 1.4% घटा था। चीन का व्यापार अधिशेष अप्रैल में सालाना आधार पर 82.3% बढ़ गया। इससे पहले विशेषज्ञों ने इस साल निर्यात कमजोर रहने का अनुमान जताया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि केंद्र की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मकसद विशेष रूप से वंचितों को जरूरी वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि PMJJBY और PMSBY सहित 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं वंचित वर्ग को जोखिम, नुकसान और वित्तीय अनिश्चितता से बचाती हैं। 3 सामाजिक सुरक्षा, जन सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना APY 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। ये तीनों योजनाएं नागरिकों की भलाई के लिए हैं जो अप्रत्याशित घटनाओं और वित्तीय अनिश्चितताओं की स्थिति में सुरक्षा देती हैं। वित्त मंत्री ने जन सुरक्षा योजनाओं की 8वीं वर्षगांठ पर कहा कि इन योजनाओं का मकसद वंचित वर्ग के लोगों को जरूरी वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना है जिनके पास जोखिमों का मुकाबला करने की क्षमता कम होती है। सीतारमण ने 3 योजनाओं के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 26 अप्रैल 2023 तक PMJJBY के तहत 16.2 करोड़, PMSBY के तहत 34.2 करोड़ और APY के तहत 5.2 करोड़ नामांकन किए गए। PMJJBY के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इसने 6.64 लाख परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता दी और उन्हें कुल 13,290 करोड़ रुपए की राशि दी। उन्होंने बताया कि PMSBY के तहत कुल 1.15 लाख से अधिक परिवारों को 2,302 करोड़ रुपए दिए गए। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लिवाली जारी रहने और अमेरिका में मंदी की आशंका कम होने के बीच प्रमुख शेयर सूचकांकों में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख रहा। इस दौरान BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 173.65 अंक चढ़कर 61,937.90 अंक पर पहुंच गया। NSE निफ्टी 54.35 अंक बढ़कर 18,318.75 पर था। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फिनसर्फ, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, HDFC प्रमुख लाभार्थी थे। दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज, ITC और रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट हुई। अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट और जापान का निकी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग लाल निशान में थे। अमेरिकी बाजार सोमवार को मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने सोमवार को शुद्ध रूप से 2,123.76 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। फिंच रेटिंग्स ने मंगलवार को भारत की सॉवरेन रेटिंग के परिदृश्य को स्थिर बताते हुए कहा कि देश में सुदृढ़ वृद्धि परिदृश्य बना हुआ है। उसने एक बयान में कहा, फिच रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग IDR को स्थिर परिदृश्य के साथ BBB पर रखा है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि सॉवरेन रेटिंग के लिए मजबूत वृद्धि क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है। उसने कहा, भारत की रेटिंग अन्य समकक्षों की तुलना में मजबूत वृद्धि परिदृश्य और बाहरी वित्तीय लचीलापन दर्शाती है, जिसने भारत भारत को पिछले वर्ष में बड़े बाहरी झटकों से पार पाने में मदद की। एजेंसी ने अगस्त 2006 से भारत की रेटिंग को BBB पर रखा है, जो सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों विभिन्न देशों की सरकारों की उधार चुकाने की क्षमता के आधार पर सॉवरेन रेटिंग्स तय करती है। इसके लिए वह अर्थव्यवस्था, बाजार और राजनीतिक जोखिम को आधार मानती है। रेटिंग ये बताती है कि एक देश भविष्य में अपनी देनदारियों को चुका सकेगा या नहीं। आमतौर पर पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड एंड प्यूअर्स S&P, फिच एंड मूडीज इन्वेस्टर्स की सॉवरेन रेटिंग तय करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने नियमों का पालन नहीं करने को लेकर HSBC पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। RBI ने एक बयान में कहा कि नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निगरानी जाँच को लेकर वैधानिक निरीक्षण किया। इस जाँच के संदर्भ में नियमों का अनुपालन नहीं करने की बात सामने आई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।